बताया गया। बुराई रहित होना साधन है। ईश्वर विश्वास के आधार पर उनकी आत्मीयता को स्वीकार करना, आत्मीयता के संबंध के द्वारा उनके प्रति प्रियता का उदय होना, ये भजन है। प्रभु के नाते उनकी बनाई हुई सृष्टि के प्रति सद्भाव रखना, सहयोग रखना, यथाशक्ति क्रियात्मक सेवा करना, प्यारे प्रभु की प्रसन्नता के लिए दृश्य जगत की सेवा, यह पूजन है। साधन भजन पूजन के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व में शुद्धता आती है, सुंदरता और कोमलता आती है। वह व्यक्तित्व इस योग्य बनता है कि उसमें परम प्रेम की सरसता आए। तो व्यक्तित्व जब सरस होता है प्रेम स्वरूप परमात्मा के प्रेम रस से, साधक का व्यक्तित्व जब सरस होता है तो उस रस रूप से अभिन्नता होती है। प्रेम रस होकर प्रेमी जन प्रेमास्पद से मिलते हैं, अभिन्न होते हैं। तो ये प्रभु मिलन है। इस प्रकार हम सभी भाई बहनों को जीवन का एक क्रम अपने सामने रखना चाहिए और बहुत ही स्पष्ट रूप से हम लोगों को जानना चाहिए कि अहम रूपी अणु में ही वे सर्व अलौकिक तत्व विद्यमान हैं कि जिनकी आज हम लोग मान अनुभव करते हैं और कल उसकी पूर्ति के आधार पर अपने को पूर्ण पाएंगे। ऐसी एक बात है। तो जब कभी आपके भीतर यह लालसा जगे, अभिलाषा बने कि मैं मनुष्य हूँ, तो मुझ में अविनाशी तत्वों की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, अर्थात नाशवान का प्रभाव मुझ पर से उतर जाना चाहिए। अभिन्नता कब होगी ये तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन आज जिस स्तर पर बैठकर हम सब लोग जीवन के सत्य में के संबंध में विचार कर रहे हैं, तो आज अपने सामने कौन सी बात रखनी चाहिए? तो आज अपने सामने ये बात रखनी चाहिए कि इस समय की जो हमारी दशा है, उस दशा में नाशवान का प्रभाव प्रधान है। किसी संगी साथी निकटवर्ती जन समुदाय के मुख से अपने समर्थन और अपनी प्रशंसा के शब्द सुनकर अपने को अच्छा लगता है जी। भले उसके बस में हो करके आप मनुष्यता के स्टैंडर्ड से नीचे न उतरें, ये बात दूसरी है। मैं बहुत ही सूक्ष्म विवेचन अहमता आपके सामने रख रही हूँ कि अपने को अच्छा लगा और किसी ने मेरे किसी किए हुए कार्य की आलोचना कर दी, कुछ अप्रिय शब्द कह दिए, तो सुन करके भीतर कुछ क्षोभ पैदा हुआ। सज्जनता के नाते मैंने प्रकट नहीं किया, साधक होने के नाते मैंने प्रतिक्रिया नहीं की, ठीक है। इतनी ऊंचाई के स्टैंडर्ड पर तो मैं अपने लोगों को रखती ही हूँ। साधक होने के नाते हम उस आलोचना या अप्रिय शब्द की प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, हम तो साधक हैं, करने वाले को पहले दो। फिर भी अगर भीतर जरा सा भी अप्रिय लगा, कुछ क्षोभ हुआ, तो उसका अर्थ क्या है कि नाशवान का प्रभाव अभी भी अपने पर है, नहीं तो क्षोभ क्यों होता। सीमित अहम भाव का पोषण अभी भी मुझको पसंद है। सीमित अहम भाव का पोषण जब तक अपने को अच्छा लग रहा है, उस असीम अनंत की प्रियता इस जीवन में कैसे लहराएगी। तो रहन सहन की सुविधा में असुविधा पैदा हो जाना और जिन कुटुंबियों के बीच में हम रहते हैं, निकटवर्ती जन समुदाय के बीच में हम रहते हैं, उनका अपने विपरीत हो जाना या बिना मेरे कहे, बिना मेरी ओर से चेष्टा किए मेरे संकल्पों की पूर्ति का इंतजाम हो जाना, तो अनुकूलता अच्छी लगती है, प्रतिकूलता बुरी लगती है। जो सुविधाएं प्राप्त हैं उनके हट जाने का मन में कुछ भय और चिंता है, और जो अनुकूलताएं आने वाली हैं उनका कभी कभी चित्र दिखाई देता है बैठे बैठे कि अब तो लक्षण कुछ ऐसे हैं कि बहुत अनुकूल परिस्थिति बन जाएगी, ये सब बातें बहुत अच्छी मेरे अनुकूल हो जाएंगी। तो अगर इन बातों का प्रभाव अपने पर होता है तो इसको मैं कहती हूँ कि नाम ज्ञान का प्रभाव मुझ पर है। आपके जानते ऐसा है कि नहीं है? नाश्वान का प्रभाव हुआ न? अब होना क्या चाहिए? तो होना चाहिए अविनाशी का प्रभाव, जो सदा सदा से है, जो सदा सदा तक रहेगा। बीच में मेरे लिए एक ऐसी घड़ी आ गई कि हमने ऐसा देखा कि भाई नाशवान के प्रभाव में पड़ के एक 24 घंटे का समय भी हमारा संतुलन में नहीं बीत रहा है। 24 घंटे का समय भी संतुलन में नहीं बीतता है। कुछ अधिक अनुकूलता सामने आ गई तो उससे संक्षोभ में भी संतुलन बिगड़ गया, और कुछ प्रतिकूलता सामने आ गई तो उसके प्रभाव में भी संतुलन बिगड़ गया। तो इस तरह से बनने बिगड़ने वाली सुखद और दुखद लहरियों में कब तक हम लोग गोते खाएंगे? कभी सुख का कभी दुख का आक्रमण जो अपने पर होता है, दुख के आक्रमण को तो आप सभी बड़े जोर से जानते हैं, लेकिन सुख का आक्रमण उससे कम खतरनाक नहीं होता। सुख का आक्रमण भी बड़े जोर का होता है। तो कब तक मनुष्य होकर, सचेत होकर, साहस कोटि के होकर, अविनाशी जीवन के जिज्ञासु होकर और अनंत परमात्मा के परम प्रेम के रस के अभिलाषी होकर कब तक सुख दुख के आक्रमणों से आक्रांत होते रहेंगे? ऐसा प्रश्न है हम सभी भाई बहनों को अपने द्वारा अपने से अकेले में बैठ करके पूछना चाहिए कि हम गीत गाते हैं अविनाशी के, चर्चा करते हैं अविनाशी के, अपने को मिलाते हैं उस आनंद स्वरूप से। एक सत्संग मंडली ने एक बार मुझे बुलाया, महिलाओं की मंडली थी, तो बड़े प्रेम से उन्होंने गाया, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, ऐसा उन्होंने गाया। तो यह है तो दार्शनिक सत्य, गाते हैं हम ऐसा, लेकिन अकेले में बैठ करके अपने से पूछो तो सही, जरा जरा की बात में पोषित किए हुए अहम के अभिमान को ठोकर लग रहा है और उस अभिमान से प्रेरित होकर अपने भीतर से आवाज निकल रही है, जरा सोचो तो सही, उस समय क्या हमारा सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो रहा है? ये नहीं हो रहा है। तो अब दो ही बातें रही हमारे सामने, या तो इस दृश्य जगत के प्रभाव से प्रभावित सुख दुख के संक्षोभ में डूबते उतराते रहो। मनोविज्ञान में दोनों को संक्षोभ ही कहते हैं। एक तो क्षुब्ध होना होता है, क्षुब्ध होने से मेरा मतलब नहीं है, संक्षोभ करते हैं जो किसी प्रकार की उत्तेजना पैदा करे। तो सुखद परिस्थितियां भी संक्षोभ पैदा करती हैं और दुखद परिस्थितियां भी संक्षोभ पैदा करती हैं। तो किसी भी प्रकार से जब तक दृश्य जगत के प्रभाव से प्रभावित हम रहेंगे और अनुपूर्णता के द्वारा अहम भाव को पोषित करते रहेंगे, परमात्मा से दिए हुए समय, शक्ति, सामग्री, शरीर, साथी, इनके संयोग का सुख भोग करते रहेंगे, तो अहम भाव जब तक पोषित होता रहेगा तब तक उसकी सीमा टूट नहीं सकती। अहम के अभिमानी में वह कोमलता आ नहीं सकती जिसमें प्रेम रस द्रवित होता है। इस सीमित अहम भाव के बने हुए रहने के काल में उस असीम अनंत के साथ अभिन्न होने का आनंद आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आरंभ कहाँ से करें? अब ऐसा सोचिए कि हम सभी भाई बहनों को पीछे की बात को तो केवल इतना ही अर्थ देना चाहिए कि उससे हम अपने लिए पाठ ले लें, लेकिन आगे बढ़ने की घड़ी अभी है वर्तमान में। तो इसी वर्तमान क्षण में अकेले होकर के अपने से पूछ के देखो तो कि वह अलौकिक तत्व विद्यमान है, आनंद स्वरूप परमात्मा विद्यमान है, प्रेम स्वरूप भगवान विद्यमान है, और उनके विद्यमान रहते हुए अपनी दशा क्या है। तो भीतर भीतर अभाव सताता है और उस अभाव से जब अपने भीतर दीनता आती है, इंफीरियरिटी आती है, तो बाहर बाहर से सद्गुणों के आधार पर, पद के आधार पर हम लोग अहम का श्रृंगार करते रहते हैं। मैं बड़ा गुणवान, मैं बड़ा पदवान, मैं बड़ा समाज सेवी, मैं बड़ा जपी, मैं बड़ा तपी, मैं बड़ा त्यागी, मैं बड़ा अध्ययनशील। अध्ययनशीलता का भी एक श्रृंगार व्यक्ति अपना लेता है। एक सज्जन मुझे मिले थे, वो बड़े पहले की बात है, हजरीका है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक नगर पंजाब में, तो वहाँ मानव संघ की एक शाखा बनी सत्संग के लिए। हम लोग वहाँ गए, सब लोग मिले, बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ के जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो थे, दो चार जने थे, तो वहाँ के लोगों ने सबको बुलाया, कहा कि माता जी सबसे अब मिलाएं आपको, मिला बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलाओ तो वृद्ध पुरुष 80 वर्ष के होंगे या 80 से भी कुछ ज्यादा ही होंगे, बड़े प्रेम से मिले और मिल करके अपनी बात जब उन्होंने बताई तो ये कहा कि इतनी उम्र हो गई है, पंडित थे, विद्वान थे, कुछ अध्ययन उनका था, शास्त्रज्ञ भी थे, तो बड़ी खुशी से कहने लगे कि अब अभी भी मेरा कार्यक्रम ऐसा चलता है कि 24 घंटे में कम से कम 8 घंटे मैं अध्ययन में लगाता हूँ। भीतर भीतर मैंने सोचा कि ये वृद्ध पुरुष 80 वर्ष का हो गया, अभी भी इसको 8 घंटे अध्ययन करने की आवश्यकता मालूम होती है, तो इतने दिनों तक जो सारा अध्ययन इसने किया वो काम कब आएगा इसे। कहा नहीं मैंने ऐसे उनको सुना और सुन करके मेरे जी में लगा कि ये भी एक व्यसन हो गया क्या, और कब तक चलेगा ये। तो कितना सूक्ष्म है और कितना सहज स्वाभाविक है कि अभी अभी मैं अगर शरीरों के साथ अपने को मिला करके बैठ जाऊं तो नाशवान के प्रभाव से इतना प्रभावित हो जाऊं, दुख दुख के आक्रमण से इतनी आक्रांत हो जाऊं कि अपने सच्चिदानंद स्वरूप का कहीं पता ही नहीं चले, ऐसी दुर्दशा। और अभी अभी सत्संग के प्रकाश में, सब ग्रंथों के प्रकाश में, संत महापुरुषों के संपर्क से, उनके वचनों के प्रकाश में आप अपने को नाशवान के प्रभाव से मुक्त करना पसंद करें तो बिल्कुल ही देर नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि सारा जैसे भ्रम का भ्रम ही था और मिटा तो कहाँ गया और कब मिटा और पहले क्या था, तो कुछ नहीं, सब एक साथ ऐसे उड़ जाता है कि सचमुच जो है उसके प्रकाश में ना मैं और तुम रह जाता है, न टाइम एंड प्लेस रह जाता है, स्थान और काल का भी कोई निशान नहीं रह जाता, और न दुख है, न अभाव है, न मृत्यु है, कुछ नहीं है। तो वस्तुता है, जो है उसी को प्रधानता देनी चाहिए। ये जो है उसको प्रधानता देनी चाहिए। अगर उसको प्रधानता हम लोगों ने दे दिया तो मनुष्यता की सुंदरता देखिए, आप स्वयं अपने आप में निर्भय और निश्चिंत हो जाइए, और आपके निर्भय निश्चिंत ज्ञान युक्त सेवा परायण प्रेम से सरक व्यक्तित्व के द्वारा इस दृश्य जगत का भी कल्याण हो जाए। आज इस संध्या की बैठक में यह एक प्रश्न अपने भाई बहनों के सामने मैं रख रही हूँ, और निवेदन यह कर रही हूँ कि आप सभी अकेले अकेले जब अपनी अपनी जगह में बैठें, थोड़ी देर के लिए इस विषय पर विचार करें। जिंदगी का इतना लंबा समय मैंने नाशवान के प्रभाव में बिताया कि अविनाशी के प्रभाव में निश्चिंत और निर्भय आनंद में हूँ। अब कहाँ है वो करने की जरूरत नहीं है, वो मैं क्यों पूछूं, आपको उसका विस्तार करने से फायदा नहीं होगा। प्रश्न इसलिए मैं रखने को करती हूँ कि अपने सामने जब साधक के लिए कोई प्रश्न खड़ा होता है तो उसके उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए और सही दिशा निर्णय करने के लिए उसके भीतर तत्परता आ जाती है। बस इतना ही तो अंतर है, और तो कुछ नहीं है। मैंने स्वेच्छा से नाशवान के प्रभाव को अपने पर होने दिया है, और यह मेरा ही निश्चय है कि अब इसके प्रभाव को हम अपने पर नहीं होने देंगे। तो प्रधानता तो आप ही की है, सदग्रंथों में सब अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन वो अच्छी बातें ग्रंथों के काम आती हैं कि पढ़ने वाले जीवित जागृत मनुष्य के काम आती है? ये मनुष्य के काम आती है। तो सब ग्रंथों में अविनाशी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए जो उपाय लिखे गए हैं वो ग्रंथों के लिए तो नहीं है, वो उस सचेत मनुष्य के लिए है जो नाशवान के प्रभाव में पड़ के अनेक संकटों से घिरा हुआ है, और जो अविनाशी के प्रभाव में पड़ के सब प्रकार के संकटों से मुक्त हो सकता है। तो मैं अविनाशी से अभिन्न होने की बात इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वह तो सहज है, स्वाभाविक है और बिल्कुल ही स्वाभाविक परिणाम है, वह तो होगा ही, अपने आप ही होगा और है ही है आपके साथ। आज का हमारा पुरुषार्थ क्या है इसलिए मैं याद दिला रही हूँ कि जब बैठ करके सत्य की चर्चा करते हैं तो शांति का बड़ा महत्व मालूम होता है, जीवन मुक्ति का बड़ा महत्व मालूम होता है, भगवत भक्ति का बड़ा महत्व मालूम होता है, और जब सत्संग का प्रोग्राम, चर्चा का प्रोग्राम पूरा हो गया और जब दूसरे दूसरे काम में लग गए और दूसरे दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने लगे, तो उस समय अपने को एक बार ध्यान से देखो तो कि शांति का महत्व लेकर बातचीत कर रहे हैं हम, मुक्ति और भक्ति का महत्व लेकर दूसरों से मिलने में सावधान हैं हम, कि और क्या क्या बातें हो रही हैं। तो मैंने ऐसा सुना है, दुख की बात है लेकिन साधकों के मुख से मैं ऐसा सुनती हूँ तो एकदम से हमारे तो हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। जब साधकों के मुख से मैं सुनती हूँ कि अरे भाई व्यवहार तो व्यवहार है, यहाँ तो ऐसे करना ही पड़ेगा। अच्छा, तो प्रधानता किसकी रही? यहाँ इस भवन में बैठकर जिस सत्य की चर्चा हो रही है उसकी प्रधानता रही कि नाशवान की प्रधानता रही? किसी व्यक्ति को अपनी ओर मुखातिब बनाए रखने के लिए उल्टा सीधा हम कर रहे हैं तो हमारे दिल में आता है कि ये भगवान ऐसी चेतना दे दीजिए। आदमी क्यों नहीं सोचता है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रसन्न हो जाएगा तो मुझे क्या दे देगा? जो जो कुछ देगा व्यक्ति व्यक्ति को वो नाशवान ही होगा कि अविनाशी होगा। तो साधक होकर इतने घंटे ध्यान लगाया कि नहीं, इतनी संख्या में अपने इष्ट के नाम का जप किया कि नहीं, इन बातों पर तो जोर लगता है अपनी ओर से। लेकिन 24 घंटे के जीवन में उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते लेते देते अविनाशी का प्रभाव अपने पर है, उस प्रकाश में हम व्यवहार कर रहे हैं कि नाशवान के प्रभाव से प्रभावित होकर व्यवहार कर रहे हैं, इस बात को सोचने में अभी को कुछ लगता ही नहीं है। और जब ऐसी चर्चा महाराज जी करते और मानव सेवा संघ के साधन प्रणाली के रूप में ये बातें हम लोग करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके यहाँ केवल थ्योरी थ्योरी है, सिद्धांत सिद्धांत की बात है, प्रैक्टिस तो कुछ है नहीं है। तो प्रैक्टिस का अर्थ क्या है कि सबको बैठा दिया जाए दो चार घंटे के लिए, कुछ पाठ पकड़ा दिया जाए, कुछ क्रिया पकड़ा दी जाए, कुछ अभ्यास पकड़ा दिया जाए और दूसरे लोग देखें तो कहें कि हाँ मानव संगठन में प्रैक्टिस है। मैं कहती हूँ कि नाशवान के प्रभाव से अपने को मुक्त करना, अविनाशी के महत्व को सब समय अपने सामने रखना, जीवन में उसको धारण करना, उसकी अभिव्यक्ति के लिए सब समय सावधान रहना, ये प्रैक्टिकल नहीं है तो क्या है जी? अच्छा, इस प्रैक्टिकबिलिटी के बिना वो क्रियात्मक की हुई साधना आपके काम आ जाएगी? तो जीवन में रखे रहो नाशवान का प्रभाव, ये धन भी नहीं घटना चाहिए, ये सुविधाएं भी नहीं घटना चाहिए, आरामदेह रहन सहन ये भी नहीं मिटना चाहिए, और शांति मिल जाए और खूब भजन बन जाए और खूब पूजन बन जाए, तो ये तो संभव हुआ नहीं। तो जो हो नहीं सकता, जो संभव नहीं है उस पर हमारा ध्यान जाता है, और जो जीवन देने वाली बातें हैं जो स्वतः ही अपने भीतर से उस अमर आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप को अभिव्यक्त करने वाली बातें हैं, उनको हम सिद्धांत कह करके थ्योरी कह करके एक किनारे रखते हैं, तो इसी का यह परिणाम है कि साधकों के भीतर एक प्रकार से हाफ हाइडेडनेस जिसको कहते हैं, तो पूरी पूरी सजीवता के साथ नहीं, आगे आगे। भगवान का नाम क्यों लेते हैं? मनुष्य है, उनको याद तो आता ही है, तो नाम लिए बिना रह नहीं सकते, तो नाम भी ले रहे हैं और नाम में प्रियता उदित होने के विपरीत कर्म भी कर रहे हैं। सत्य की चर्चा किए बिना रहा नहीं जाता, तो सत्संग का बड़ा बड़ा आयोजन भी कर रहे हैं और असत का सहारा लेकर आयोजन को पूरा भी कर रहे हैं। तो भाई बाहरी बातों में हम चलेंगे और इन बाहरी बातों को महत्व देंगे तो असत के प्रभाव को उतारे बिना काम नहीं करेंगे। तो एक चीज ये है अपने द्वारा सोचने की, और पहली बात हो गई थी कि संकल्प को पूर्ति के सुख के प्रलोभन का त्याग पहला पाठ है। ऐसा मुझे लगता है कि जैसे स्कूल जाते जाने पर सबसे पहले अपने समय की बात कर रही हूँ, आजकल तो क्या क्या हुआ है, तो सबसे पहले वर्णमाला के अक्षर सिखाए जाते थे, तो ऐसा लिख करके और उस पर उंगली ऐसे ऐसे फेरने के लिए अभ्यास कराया जाता था पाठशाला में, और बहुत से बीज रखे रहते थे किसी किसी तरह के, और जमीन पर बड़ा सा कौ लिख दिया और बीज से उसको सजाते थे हम छोटे बच्चे। तो जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ और सबसे पहला पाठ होता है वर्णमाला के अक्षर पर उंगलियों को फेरना, ऐसे ही अगर अपने को साधक स्वीकार करते हैं हम और साधना महाविद्यालय से प्रवेश करते हैं, तो पहला ही पाठ होना चाहिए और यही है कि संकल्प पूर्ति के सुख के प्रलोभन को छोड़ो। ये तो पहला पाठ हो गया। दूसरा पाठ क्या हो गया? दूसरा पाठ हो गया कि जब अपने संकल्प पूर्ति के सुख के लिए कुछ नहीं करना है तो करने की सामग्री जो मिली है वो क्या होगी? तो वो निकटवर्ती जन समुदाय की सेवा में लगाओ। दूसरा बात हो गया। तो तीसरी बात क्या हो गई कि अब प्रातः काल संध्या समय दोपहर को आधी रात को जिस समय भी घड़ी मत देखिए, बात है और माइंड को बिल्कुल फ्री रखते हैं और आप में सामर्थ्य है तो वो भी बढ़िया है। तो जिस समय अवसर लग जाए उसी समय थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाओ और फिर अपने को देखिए, अपने से बात कीजिए और पूछिए कि अभी जो कार्यक्रम चल रहा है मेरा प्रातः काल से संध्या समय तक सूरज जगने के बाद से लेकर पुनः निद्रा की जड़ता में डूबने के समय तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें नाशवान के प्रभाव की प्रधानता है कि अविनाशी की प्रधानता है, सोच के देखो। और जहां जहां आपको ऐसा लगेगा कि ये काम तो मैंने जगत के प्रभाव से प्रभावित होकर किया तो तुरंत ही चेतना आएगी, तुरंत ही आपके भीतर से बल आएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। बड़ा आराम मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। आप प्रयोग करके देखिए, मनुष्य का सारा जीवन ही इस सत्य के प्रमुख प्रयोग पर इतना खरा निखरता है, इतनी सुंदरता उसमें आती है कि बाहर से किसी तरह की बाहरी मदद लेने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्तित्व में आज धन का लोभ, तम का मोह, पद का अभिमान, सम्मान की वासना इसको गंदा करके रखे हुए है, कहाँ कहाँ हम दलित होते फिरते हैं, कहाँ कहाँ अपमानित होते फिरते हैं और ऊपर से ढकते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, नीरसता से पीड़ित रहते हैं और बाहर बाहर रस की खोज करते फिरते हैं, बड़ी दुर्गति हम लोग कर लेते हैं स्वयं अपने हाथ से अपने व्यक्तित्व के। सत्संग के प्रकाश में, संत महापुरुषों के संपर्क में, सब ग्रंथों के वाक्यों में निष्ठा रखकर जब सत्य की अभिव्यक्ति की ओर हम चलते हैं तो कितनी जल्दी असुंदरता का नाश होता है, कितनी जल्दी विकारों से मुक्त हम होते हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा, सोचा मैंने एक बार तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि देखिए कितनी सहज बात है, जिसने हमें बनाया उसने अपनी ही धातु से बनाया और इस व्यक्तित्व के मूल में जो जीवन तत्व है वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। मृत्यु जो होती है तो स्थूल शरीर उसमें नष्ट होता है, उसके आगे और कोई चीज उसमें मृत्यु के प्रभाव से नष्ट नहीं होती है। तो जीवन के मूल में अविनाशी तत्व है और उसी के आधार पर हम लोगों के भीतर अविनाशी जीवन की जिज्ञासा भी रहती है और उसकी आवश्यकता भी हम अनुभव करते हैं। तो जो सत्य है, जो सनातन है, जो सदा सदा के लिए रहने वाला है, जो दुख रहित है, मृत्यु रहित है, अभाव रहित है, ऐसा जो है तो उसका प्रभाव जोरदार होना चाहिए कि थोड़ी देर के लिए बीच में कहीं पर अपना एक माना हुआ संबंध हमने ममता के आधार पर, मोह के आधार पर, लोभ के आधार पर बना लिया तो वो जोरदार होगा कि जो सदा सदा के लिए रहने वाला है वो जोरदार होगा, वही जोरदार होना चाहिए ना। अब माँ अब आज देखो अपनी हालत क्या है, तो हालत ऐसी है, बड़े दुख की बात है कि जब कभी सब चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई माया बड़ी प्रबल है, तो मायापति की महिमा से प्रबल हो गई माया ज्यादा जी, झूठी बात है ना, ये केवल एक बहाना ही है। तो इस बहानेबाजी से काम चला नहीं, देखिएगा कि अविनाशी के प्रभाव को ग्रहण करना कठिन है, कि अविनाशी के प्रभाव को जीवन में महत्व देना कठिन है, ऐसा कभी मत सोचना। क्यों? क्योंकि यदि अपनी ओर से हम लोग उसको कठिन मान लेंगे तो फिर कभी भी उस ओर आगे बढ़ने की तत्परता जीवन में आएगी नहीं। ये अहम का ही तो खेल है, ये तो मैंपन का ही सब कुछ चमत्कार है, जिससे मिला लो उसी के समान हो जाए। और अहम के बारे में बड़ी अच्छी बात लिखी है, उसमें ये लिखा है, केवल एक समझाने का तरीका है, उसमें लिखा है कि एक जगह पर वादी यंत्रों का वो कंसर्ट हो रहा था, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मालूम नहीं, सब मिल करके विभिन्न प्रकार के बाजे एक राग गाते हैं, तो वो हो रहा था, तो उसमें अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार के वादी यंत्र लेकर बैठे थे। एक व्यक्ति उसमें इतना छोटा सा एक टेढ़ा मेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा लेकर बैठा था, और जब सब लोग बजाते थे तो वो भी लकड़ी पर अपनी उंगली फेरता था। हो गया कार्यक्रम पूरा हो गया, तो बाद में किसी ने कहा कि भाई ये कौन सा यंत्र है, इसका नाम हम लोगों को मालूम नहीं होता है, इसकी पहचान नहीं है कि ये क्या है। और सारे वाद्य यंत्रों को तो सभी लोग जानते ही हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे वाद्य यंत्र का नाम है मिल बाजा, मिल बाजा। तो अच्छी बात, तो इसमें से राग कौन सा निकलता है कैसे, तो उन्होंने कहा कि इसका अपना कुछ नहीं है, जिस यंत्र के साथ इसको मिला दो उसी का राग इसमें से निकलता है। तो ये अपना जो हम लोगों का अहम है, मैपन है, उसका एकदम यही हाल है, ये भी मई बाजा है। अगर हम इसको असत के साथ मिला दो, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ये वस्तु मेरी है, ये मकान मेरा है, ये पद मेरा है, तो मैं और मेरे पन के रूप में इसको अगर मिला दो असत से, तो असत के सब राग इसमें से निकलने लगते हैं। मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, जी असत के सब राग निकलने लगते हैं। उसमें से थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बनता रहे बिगड़ता रहे बदलता रहे मिटता रहे, उसको सत कहेंगे कि असत कहेंगे, तो वो असत का राग निकलने लगता है। और सचेत होकर विचारक बनकर सत असत का विवेचन करके सत्संग के प्रकाश में जाने हुए असत के त्याग का पुरुषार्थ कर डालो, तब क्या होता है कि जब वही सत से मिल जाता है तो सत का राग उसमें से निकलने लगता है। मैं परम शांत हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूँ। अभी क्या हो रहा था भाई, अभी तो आप कह रहे थे मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा सुखी हूँ, अभी तो ये वर्णन हो रहा था, अब क्या हो गया? तो नहीं नहीं वो तो मेरी भूल थी, वह तो मेरा भ्रम था, वो तो झूठी बात थी, वह तो मिथ्या आरोप था, और पता नहीं क्या क्या बहुत से शब्दों का प्रयोग किया जाता है उस दशा को बताने के लिए। और अब क्या है, तो मैं तो शुद्ध हूँ, मैं शांत हूँ, ये हो जाता है। तो मैं आज इस बैठक में अपने लिए और आपके लिए केवल इतनी सी बात याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा आपका जो जन्म हुआ है और इस धरती पर सृष्टिकर्ता हम लोगों को संभाल करके रख रहे हैं, इन सारी बातों की सार्थकता इसमें है कि हम निज विवेक के प्रकाश का सदुपयोग करें और नाशवान के प्रभाव को अपने पर से मिटाकर अविनाशी के प्रभाव को महत्व दें, तो यहाँ से हमारा साधन युक्त जीवन आरंभ होगा, आप शांति को महत्व देंगे, जीवन मुक्ति को महत्व देंगे, भगवत भक्ति को महत्व देंगे, तो आपके भीतर इन अविनाशी तत्वों के प्रति महत्व बुद्धि अगर पैदा हो गई, आपने अपनी दृष्टि को इनके महत्व से भर लिया, तो फिर अपने विकारों के मिटाने में आपको प्रयास और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो जो सही उपाय है उस पर ध्यान जाता नहीं है, असत के महत्व को जीवन में रखे रहो और उसके परिणाम को मिटाने की चेष्टा करो, तो मिटता ही नहीं है। धन का लोभ भीतर बना रहे और निश्चिंत रहने की चेष्टा करो, तो मस्तिष्क में उठने वाले चिंतन को कोई कहता है यहाँ कैद करो, 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 तो कहीं भी कैद करो, अभ्यास करने से, चेष्टा करने से कुछ देर के लिए चिंतन कैद में आ सकता है, लेकिन वो उसका नाश नहीं होगा, वो रहेगा। कुछ देर के लिए वैसा होगा, कुछ देर के लिए फिर अपना रंग दिखाएगा। शांति महाराज ने हम लोगों को यह सलाह दी कि तुम्हारे में इतनी सामर्थ्य है कि तुम अगर चाहो तो जिस क्षण में चाहो उसी क्षण में नहीं को नहीं कह करके अस्वीकार कर सकते हो। तो अपनी ओर देखना, स्वयं अपनी ओर से पुरुषार्थ आरंभ करना, अविनाशी जीवन की आवश्यकता को अनुभव करना हमारा पुरुषार्थ है, और उसकी पूर्ति का सारा प्रबंध जुटाना ये जीवनदाता का दायित्व है। अपना दायित्व तो बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। पहले पहल जब मुझे मालूम हुआ कि मैं अपनी भूल के परिणामों में फंसी हुई हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा ठीक है, अब इसको मिटाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तो थोड़ी मैंने अपनी ओर से चेष्टा की। बहुत अच्छी तरह याद है, शरीरों के साथ मिल मिल करके रहते रहते ये भ्रम इतने जोर का पक्का हो जाता है कि सोचने की कोशिश करो कि यह शरीर मैं नहीं हूँ, इस शरीर में मैं नहीं हूँ, यह शरीर मेरा नहीं है, तो ये सोचना किसी तरह से भीतर बैठता ही नहीं है, लगता है कि यही तो है। तो ऐसे जब मुझको थोड़ी कठिनाई होने लगी, तो मैंने स्वामी जी महाराज को बताया कि महाराज आप जो कहते हैं वो सत्य मालूम होता है, उसमें मुझको संदेह नहीं होता, और जैसा आप कहते हैं वैसा करने का मुझे शौक भी है, मैं चाहती भी हूँ कि प्रयोग करके देख लूँ, लेकिन ऐसे कुछ हमसे हो नहीं रहा है। बड़ा अद्भुत अद्भुत लगता है, मालूम होता है कि ना मालूम कौन सा फॉर्मूला है जो स्वामी जी महाराज बोल रहे हैं, जो हमारे भीतर बैठती ही नहीं है। तो उन्होंने मुझको बहुत अच्छी तरह इस बात को बताया कि भाई देखो, उस सत्य को पकड़कर सामने रखना जीवन के लक्ष्य के रूप में, और उससे अभिन्न होने की आवश्यकता अनुभव करना, और जितनी सामर्थ्य तुम्हारी बच गई है सुख भोगों से, संघर्षों से, अतिरिक्त वासनाओं की ज्वाला से, परिस्थितियों की पराधीनता से शक्ति का ख्याल होता जाता है। जब हम साधक होने चलते हैं तो अधिक अंश में तो सब नष्ट ही हो गया है, थोड़ा सा बच गया है। तो महाराज जी ने कहा कि जितनी सी शक्ति बच गई है उसका सदुपयोग तुम करो, और अविनाशी जीवन से अभिन्न कराने का सारा दायित्व उस जीवनदाता ने, उस समर्थ स्वामी ने मनुष्य के दुर्बल कंधों पर नहीं डाला है। बहुत अच्छी बात है ना, बड़ा आराम मिला। दुर्बलताओं से घिरा हुआ व्यक्ति अपने प्रयास से, अपनी ओर से चेष्टा में लगा हुआ है, तो जितनी सामर्थ्य उसके पास है उतनी ही चेष्टा उससे अपेक्षित है। कितनी बड़ी बात है, तो प्रयास कर लो अपनी ओर से, और उसके बाद उस सामर्थ्यवान की शरण में, उस परम कृपालु की कृपा में आराम करो। कैसे कि अब मेरे लिए करणीय कुछ भी शेष नहीं है, तो प्रयत्न चला गया। अहम का स्फुरन बंद हो गया, स्फुरन बंद हो गया तो वो गलने लगा, खत्म होने लगा। और उसके साथ जिसने कृपा शक्ति का आश्रय लिया तो उन कृपालुओं की कृपा शक्ति जब स्वयं ही साधक को उस जाल में से निकालती है, उसकी दुर्बलताओं को मिटाती है, उसकी मलिनता को धो करके साफ करती है, प्रभु के प्रेम का पात्र बनाती है, तो वो प्रक्रिया बड़ा ही आरामदेह है। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि सभी अनुभवी साधकों ने इसको अनुभव किया है और किसी किसी ने तो ऐसा कहा, और एक एक मौके पर मैंने ऐसा अनुभव किया। और अभी भी कभी कभी अकेले में मैं बैठती हूँ तो गुजराती हूँ उसको, बड़ा बढ़िया है ये तो आपका विधान, इस प्रकार का आत्मा भी कितना शुभ है। जब मैंने अपनी ओर से अनुभव किया कि अब मैं तो हार गई, अब हमारे किए कुछ होगा नहीं, तो उस तरह का आना भी इस पथ में बड़ा शुभ है। क्योंकि जब साधक अपनी ओर से हारने लगता है तो जिताने वाले को मजा आता है, बहुत आनंद की बात है। एक बार दृढ़ता पूर्वक उस लक्ष्य को दृष्टि में रख करके आप उसमें लग जाइए, बस